स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। मैं यह विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी इस अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों में हम उत्पत्ति की पुस्तक के 18 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, फिर इब्राहिम द्वारा अतिथियों की देखभाल करना आदि विषयों पर देखा था। आज हम 18 अध्याय में से ही अपने अध्ययन को आरम्भ करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन करें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन में से सीखने का अवसर प्रदान किया है। आज हम जो कुछ भी आपके वचन में से सीखते हैं, होने दीजिए कि यह हमारे जीवन में आशीषों को जोड़ सके। कृपया आप हमारी सहायता करें और हम इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज के अध्ययन को हम उत्पत्ति उसके 18 अध्याय और उसके 9 पद से आरंभ करेंगे। हम यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब उन्होंने उससे कहा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। मित्रों, उन दिनों में यह उचित नहीं माना जाता था कि जब कोई अतिथि घर में आए तो पत्नी भी उनके मनोरंजन में साथ दे, और जहाँ तीन अतिथि हैं तो यह नामुमकिन ही था। और आज भी यह प्रथा पूरी देशों में पाई जाती है, यहाँ तक कि हमारे देश में भी कई गाँव में आज भी हमारी माताएं और बहनें किसी अनजान अतिथि के सामने आने पर पर्दा करती हैं या बाहर नहीं निकलती हैं। परंतु यहाँ पर अतिथियों ने सारा के बारे में पूछा और जानना चाहा कि वह कहाँ है। तब हम उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं, उससे कहा गया, मैं अगले वर्ष निश्चय इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा, और देख, तेरी पत्नी सारा से एक पुत्र होगा। और उसके पीछे सारा तंबू के द्वार से सुन रही थी। मैं सोचता हूँ कि सारा ने द्वार के पास अपने कानों को इनकी बातों को सुनने के लिए पर्दे से लगा रखा था। अब यहाँ पर जाने अनजाने में इब्राहिम और सारा दोनों ही अतिथियों का सेवा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ है कि ये परमेश्वर के दूत हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, इब्राहिम और सारा तो बूढ़े थे, उनकी आयु ढल गई थी और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। सारा मन में हंसते हुए कहने लगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा स्वामी भी तो बूढ़ा हो गया है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? सारा ने यह पूछा कि क्या यह संभव है कि मुझसे पुत्र उत्पन्न होगा, और वह हंसी। अब यह किस प्रकार की हंसी थी, और मैं सोचता हूँ कि यह वह हंसी थी जो कहती है कि यह सच साबित हो जाए यही काफी है। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने इस प्रकार के अनुभव अवश्य प्राप्त किए होंगे। कई बार परमेश्वर हमारे लिए इतने अच्छे रहे हैं कि हमारे पास हंसी के सिवाय कुछ नहीं होता है। यहाँ पर कुछ हुआ जो सही होने पर बहुत ही अच्छा था, और इसी कारण से सारा हंस पड़ी थी। वह कह रही थी, यह कुछ है जो सत्य भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह मुझ में नहीं हो सकता है। अब हम आगे उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि मैं जो इतनी बूढ़ी हूँ क्या सचमुच जन्म दे सकूंगी? क्या यहोवा के लिए कुछ भी असंभव है? मैं निर्धारित समय पर अर्थात अगले वर्ष इसी समय तेरे पास फिर आऊंगा और सारा की गोद में एक पुत्र होगा। सारा ने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वह डर गई थी। परंतु उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। मित्रों, परमेश्वर के प्रश्न से सारा डर गई और टाल मटोल करने लगी, परंतु वह सत्य को ठुकरा नहीं सकती थी, उसे स्वीकार करना ही था। अब हम उत्पत्ति 18 के 16 पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, तब उन पुरुषों ने वहां से उठकर सदोम की ओर दृष्टि की, और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ साथ चल रहा था। मित्रों, इब्राहिम के तंबू के बाहर कोई बाहरी दीवार का द्वार या गेट नहीं था, इसलिए वह भी उन्हें छोड़ने के लिए कुछ दूर तक साथ साथ गया। जब वे इब्राहिम के पास से जा रहे थे, तब उन्होंने सदोम और अमोरा की ओर दृष्टि की। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि जब वह उस शहर में था, उसने बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बातों को देखा कि आप दिन के समय बहुत दूर तक देख सकते हैं, यहाँ तक कि यरूशलेम से बेतलहम देखा जा सकता है, और विनाश किए गए सामरिया से भी यरूशलेम, भूमध्य सागर और गलील का सागर देखा जा सकता है। आप होरे पर्वत को किसी भी स्थान से देख सकते हैं, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। इब्राहिम इन अतिथियों के साथ नीचे तक गया और उन्होंने सदोम और अमोरा को देखा। उन दिनों में वे लोगों का एक बड़ा आश्रय था और वे बहुत खुश हुए होंगे, और जगह भी बहुत सुंदर थी। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने की घोषणा करते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने कहा, जो मैं करने पर हूँ क्या उसे इब्राहिम से छिपा रखूं? इस समय तक परमेश्वर ने इब्राहिम पर यह प्रकट नहीं किया है कि वह सदोम और अमोरा शहर के साथ क्या करने जा रहा है। वह उन शहरवासियों को नाश करने जा रहे हैं और कहते हैं, क्या मैं इब्राहिम से उसे छिपाए रखूं जो मैं करने पर हूं? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर क्यों इब्राहिम से नहीं छिपाना चाहते हैं। उत्पत्ति उसके 18 अध्याय के 18 पद में लिखा है, इब्राहिम से तो एक महान और शक्तिशाली जाति उत्पन्न होगी और उसी के द्वारा संसार की सब जातियां आशीष पाएंगे। इब्राहिम एक अद्भुत प्रभाव डालने जा रहा है, वह बहुत बड़ी भीड़ को प्रभावित करने जा रहा है, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी भी इसमें शामिल है। यह आज भी सत्य है, इब्राहिम हमें प्रभावित कर रहा है और हम इसे टाल नहीं सकते। उसका जीवन ही हमें प्रभावित करता है। मित्रों, हम अगले पद अर्थात उत्पत्ति 18:19 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने इसे इसलिए चुना है कि वह अपने बच्चों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा दे कि वे धार्मिकता और न्याय के काम करते हुए यहोवा के मार्ग पर स्थिर बने रहें, जिससे कि जो वचन यहोवा ने इब्राहिम के विषय कहा है उसे पूरा करे। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि सदोम और अमोरा शहर के विनाश करने के बारे में इब्राहिम से न छिपाऊं, नहीं तो मेरा गलत प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इब्राहिम के घर में सभी लोगों को अनुशासित किया गया था, अर्थात अनुशासित थे। और हम आगे उत्पत्ति 18:20-21 पद में पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने कहा, वास्तव में सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप अत्यंत गंभीर हो गया है। मैं उतर कर देखूंगा कि जैसी चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है क्या उन्होंने ठीक उसी के अनुसार किया है, यदि नहीं तो मैं जान जाऊंगा। मित्रों, दूसरे शब्दों में परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, मैं वहां की परिस्थिति को जानता हूं, परंतु मैं वहां पर जांच पड़ताल के लिए जाना चाहता हूं। परमेश्वर कभी भी जल्दीबाजी या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते हैं, और यह अच्छी बात थी कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया कि वह इन शहरों को नाश करने वाला है, अन्यथा इब्राहिम पर परमेश्वर का गलत प्रभाव पड़ता। शायद वह सोचता कि परमेश्वर अधिनायक और दंडात्मक है और उसने कोई दया नहीं दिखाई या उनका कोई विचार नहीं किया गया जो उसके साथ हैं। इब्राहिम के मन में परमेश्वर के प्रति सचमुच में भ्रांत और विकार विचार होता, और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बता देना ही अच्छा समझा कि वह सदोम और अमोरा के साथ क्या करने जा रहा है। और अब इब्राहिम के पास समय है कि वह इसे अपने ही मन में बदले। यह अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम को बता दिया, अन्यथा उसके मन में परमेश्वर के प्रति और सदोम और अमोरा के प्रति गलत धारणा होती। वह बहुत सी चीजों के लिए या बातों के बारे में गलत ठहरता। यही कारण है कि परमेश्वर हमें सब कुछ बता रहे हैं जो वह है, और भी बहुत सी बातें हैं जिसे उसने हमें नहीं बताया है, परंतु उसने हमें काफी कुछ बता दिया है ताकि यदि कोई व्यक्ति मूर्ख भी हो और भ्रमण करने वाला व्यक्ति हो, वह उसमें कोई गलती करने की जरूरत नहीं करेगा। आगे हम उत्पत्ति 18:22 पद में पढ़ते हैं, तब वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर गए, परंतु इब्राहिम तब भी यहोवा के सम्मुख खड़ा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इब्राहिम परमेश्वर के सामने इंतजार कर रहे हैं, और आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम मध्यस्थता करते हुए परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 18:23 पद में पढ़ते हैं। फिर इब्राहिम ने समीप आकर कहा, क्या तू सचमुच दुष्टों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? वह क्या चीज थी जो सबसे पहले इब्राहिम के मन में आई? सबसे पहले इब्राहिम के मन में जो बात आई वह थी लूत, उसका भतीजा। उसने एक बार लूत को छुड़ाया था और फिर से लूत मैदानी या उस क्षेत्र में रहकर खतरे में है। मैं सोचता हूं कि इब्राहिम ने कई बार लूत के बारे में सोचकर आश्चर्य किया होगा कि उसका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, परंतु इब्राहिम यह विश्वास करता था कि लूत उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, इसलिए वह परमेश्वर से कहता है कि धर्मियों का क्या होगा। मैं विश्वास करता हूं कि इब्राहिम ने बताया होगा कि उस शहर में बहुत से उद्धार पाए हुए लोग हैं। वह नहीं समझ पाया कि क्यों परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों के साथ नाश कर रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं और इसी में आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 18:24 पद में, कदाचित नगर में 50 धर्मी जन हो, क्या फिर भी तू उन्हें नाश कर देगा? क्या उन 50 धर्मियों को जो उसमें हैं बचाने के लिए उस स्थान को सुरक्षित ना छोड़ेगा? मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम 50 से आरंभ करते हैं। वह परमेश्वर से कहता है, यदि नगर में 50 धर्मी जन हो तो क्या फिर भी तू उन्हें नाश करेगा? 50 धर्मी होने पर भी। और हम उत्पत्ति 18:25 में पढ़ते हैं, यह बात तुझसे दूर रहे कि दुष्टों के साथ धर्मियों को नाश करके धर्मियों और दुष्टों को एक समान करे, ऐसा करना तुझसे दूर रहे। क्या समस्त पृथ्वी का न्याय उचित न्याय ना करे? मित्रों, यह प्रश्न आज भी बहुत से लोग पूछते हैं, क्या समस्त पृथ्वी का न्याय उचित न्याय ना करे? और इसके लिए एक उत्तर है, कि बाइबल की बाकी पुस्तकें इस सत्यता की गवाही देती है कि समस्त पृथ्वी का न्याय जो भी न्याय करता है वह हमेशा ठीक ही करता है। जो कुछ भी परमेश्वर करते हैं वह ठीक ही करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि वह ठीक नहीं कर रहे हैं तो समस्या परमेश्वर के साथ नहीं, परंतु समस्या आपके और आपकी सोच के साथ है। मित्रों, आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास सब सच्चाइयां उपलब्ध नहीं है और आप उस शहर की सारी जानकारियां नहीं जानते हैं। यदि आप इसे जानते तो आप यह भी जान जाते कि समस्त पृथ्वी का न्यायी जो कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, अर्थात हम सब गलत हैं और वह सही है। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धर्मी भी मिल जाएं, तो मैं उनके कारण सारे स्थान को छोड़ दूंगा। और इब्राहिम सोचता है कि यह खत्म हो गया, परंतु हम आगे उत्पत्ति 18 उसके 27 से 28 पद में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने उत्तर देते हुए कहा, देख यद्यपि मैं धूल और राख सदृश हूं, फिर भी मैं प्रभु से बात करने का साहस कर रहा हूं। यदि उन 50 धर्मियों में से 5 कम हो जाएं, तो क्या तू उन 5 के कारण सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे वहां 45 भी मिल जाएं, तो नाश ना करूंगा। मित्रों, दूसरे शब्दों में हम कहें तो इब्राहिम कहता है, यदि वहां पर सिर्फ 45 धर्मी बच जाए तो क्या तू 45 के चलते शहर को नाश कर देगा? और परमेश्वर कहते हैं, यदि उस नगर में 45 धर्मी जन पाता हूं तो मैं उसे नाश नहीं करूंगा। यह इब्राहिम को थोड़ी हिम्मत देता है और वह परमेश्वर से कहता है, यदि वहां पर सिर्फ 40 हैं तब? यहां पर रुचिदायक बात यह है कि परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। और इब्राहिम लगातार संख्या को कम करने में लगा रहा। वह कहता है, यदि 30 रहे तो? फिर परमेश्वर कहते हैं, यदि वहां पर 30 धर्मी भी हैं तो मैं नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम पुनः कहता है, मान लीजिए वहां पर 20 ही धर्मी है तब? परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें नाश नहीं करूंगा। इब्राहिम अब उत्साह से भर गया और वह एक मौका और लेता है, यदि वहां पर सिर्फ 10 ही धर्मी हैं तब क्या तू उन्हें नाश करेगा? सिर्फ 10 धर्मी जन? और परमेश्वर कहते हैं, यदि शहर में 10 धर्मी हैं तो भी मैं इसे नाश नहीं करूंगा। मित्रों, हम आगे उत्पत्ति 18 के 33 पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इब्राहिम से बात पूरी करके यहोवा वहां से चला गया और इब्राहिम अपने स्थान पर लौट आया। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इब्राहिम 10 से नीचे क्यों नहीं आया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों वह 10 से नीचे नहीं आया। इस समय तक वह डरा हुआ था कि लूत नाश हो जाएगा और यही बात उसे परेशान कर रही थी, इसलिए अब वह 10 से नीचे नहीं उतरने वाला है। लेकिन वह एक धर्मी जन तक आ सकता था और कह सकता था, परमेश्वर यदि एक ही धर्मी जन इस नगर या शहर में है तो क्या आप इस नगर को नाश कर देंगे? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा होता? वह कहते, यदि उस नगर में एक भी धर्मी व्यक्ति है तो मैं उसे उस नगर से बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि मैं उस नगर के साथ धर्मी व्यक्ति को नाश नहीं करूंगा। आप कहेंगे कि आप कैसे जानते हैं कि परमेश्वर इसी प्रकार से कहेंगे? क्योंकि इसी रीति से वो सब कुछ हुआ। वहां पर एक ही धर्मी व्यक्ति था और इब्राहिम ने विश्वास नहीं किया, परंतु परमेश्वर उसे जानते थे और वह लूत था। परमेश्वर ने लूत से कहा कि नगर से बाहर निकल जा, जब तक तू बाहर नहीं निकल जाता मैं नगर को नाश नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है महासताओं का काल नहीं आएगा? मित्रों, वो नहीं आ सकता क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे न्याय को सह लिया है और महासताओ इसी न्याय का एक हिस्सा है जो आने वाला है, और यही कारण है कि कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी। यह उस समय का एक महत्वपूर्ण सत्य या दृश्य है। हम देखेंगे कि सदोम और अमोरा संसार का एक रूप है और वह क्या ही भयानक दृश्य है। आज संसार की स्थिति क्या है? यह सदोम और अमोरा के जैसे ही है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कल ही आ जाएंगे। कोई भी नहीं जानता और न ही मैं जानता हूं कि वह कब आएंगे, परंतु वह कल भी आ सकते हैं। वह निश्चित रूप से सदोम अमोरा के गंदे दृश्य को अपने साथ अवश्य रखेंगे, जो इस उत्पत्ति की पुस्तक में हमारे सामने है, कि एक भी धर्मी जन दूसरों के साथ नाश न होने पाए। मित्रों, यहां पर 18 अध्याय समाप्त होता है, लेकिन हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए उत्पत्ति के 19वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। इसके पूर्ववर्ती अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर के साथ आशीषित मसीहियों की संगति का दृश्य था, परंतु अब इसके दृश्य में परिवर्तन है। हम हेब्रोन में मामरे के मैदानी क्षेत्र को, जहां इब्राहिम रहता है, वहीं छोड़ देते हैं और हम सदोम नगर में जाते हैं जहां लूत रहता है। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि लूत अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ सदोम नगर को छोड़ता है और सदोम और अमोरा नगर नाश किया जाता है। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन जाती है और इसके बाद हम लूत के भयंकर पाप को अपने बेटियों के साथ होते हुए पाते हैं। अध्याय 19 में हमारे पास एक दृश्य है जो एक अभिशाप जीवन को दर्शाता है या एक अभिशाप जीवन है। मित्रों, आप इस बात को न भूलें कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था, यद्यपि यह विश्वास करना कठिन लगता है, जैसे मेरे लिए। यदि यह सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक में ही लिखा होता तो शायद मैं इस पर विश्वास नहीं करता, परंतु शमौन पत्रस अपनी पत्री में लूत की चर्चा करते हैं, दूसरा पत्रस 2:8 में, क्योंकि वह धर्मी पुरुष अपनी सच्ची आत्मा में दिन प्रतिदिन व्यथित होता था। लूत सदोम में रहता था, परंतु वह वहां कभी भी खुश नहीं था। जिस दिन वह सदोम के लिए रवाना हुआ, यह उसके लिए एक दुखांत दिन था, क्योंकि उसने अपने परिवार को खो दिया। यदि आप इसके पूरे दृश्य को देखेंगे तो पाएंगे कि उसने अपने सब रिश्तेदारों को खो दिया। यह वास्तव में एक दुख की बात थी। मित्रों, हो सकता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो उद्धार पाए हुए हैं, परंतु उसके व्यवहारिक जीवन के कारण या जहां वो रहते हैं उसके कारण उन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया है, अपने प्रभाव और अपनी गवाही को खो दिया है। आज भी बहुत से मसीही हैं जो लूत के समान जीवन जीते हैं। एक बार कलीसिया के अगुए का एक जवान लड़का कह रहा था कि मैं अपने पिता के मरने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं मसीही जीवन का परित्याग कर सकूं। वह यह सोच रहा था कि सब कुछ बनावटी है और जो कुछ उसने देखा है वह सब दिखावा है। यह सच है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह उसके घर की दशा के बारे में बता रही है। क्या उसका पिता बनावटी हो सकता है? उस व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया और दूसरे स्थानों में उसने अपने प्रभाव को खो दिया। मैं इसकी सांत्वना देता हूं कि यह ऐसा हो सकता है, परंतु मैं उसके उद्धार के बारे में प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं सोचता हूं कि वह व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परंतु आप उसके जीवन को देखकर कभी भी नहीं जान या समझ पाएंगे। कमजोर लूत के लिए यह कितना दुखमय था। उत्पत्ति के पुस्तक के इन दो अध्यायों में से यह अध्याय सबसे घिनौना अध्याय है। इस पुस्तक में आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत सदोम में लूत से मिलने के लिए आए। तो आइए हम उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 1 को पढ़ें, जहां पर लिखा है, संध्या समय जब लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था, तब वे दो स्वर्गदूत सदोम पहुंचे। जब लूत ने उन्हें देखा तो वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और उन्हें दंडवत करने लगा। मित्रों, ये दो स्वर्गदूत सदोम में इसलिए गए कि वे उस नगर के विनाश की घोषणा करें और लूत से मिले। यहां पर ध्यान दीजिए कि लूत नगर के फाटक या गेट के पास बैठा हुआ था। मैं आपके ध्यान को बिना इस ओर केंद्रित किए आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपको याद होगा कि नगर के गेट पर सिर्फ न्यायी लोग न्याय करने के लिए बैठते थे। यह व्यक्ति लूत न केवल वह सदोम नगर में गया, परंतु वहां जाकर राजनीति में भी शामिल हो गया। यहां पर वह एक न्यायी के रूप में इस गेट के पास बैठा हुआ है। अब हम आगे उत्पत्ति 19 के 2 में पढ़ते हैं, उसने कहा, मेरे स्वामियों, कृपा करके अपने दास के घर पधारें और अपने पांव धोकर यही रात बिताएं, फिर प्रातः शीघ्र उठकर अपने मार्ग पर चले जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। हो सकता है कि इन दोनों व्यक्तियों के पैर गंदे हों, और यह सच है। यदि आप मामरे के मैदानी क्षेत्र में पैदल चलकर सदोम आते हैं और वो सिर्फ सैंडल पहने हुए हैं, तो निश्चय ही आपके पैर धोने की आवश्यकता है। अब फिर से मैं आपका ध्यान उस समय की प्रथा की ओर या परंपरा की ओर ले जाना चाहूंगा कि उन दिनों में राहगीर या अतिथियों के स्वागत में ऐसा किया जाता था। लूत एक अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति था। जब ये अजनबी या राहगीर आए तो उसने उन्हें अपने घर में आने का निमंत्रण दिया और वे उसके घर में आए। जो भी हो, उन्होंने पहले अनिच्छा व्यक्त की और कहा, नहीं, हम अपनी रात इसी चौराहे पर बिताएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह हम पूरी रात बाहर ही बिताएंगे। हम आपको कल्पना या अनुमान कराना नहीं चाहते हैं। वास्तव में उन्होंने ऐसा एक उद्देश्य के अंतर्गत कहा। उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जब उसने उनसे बहुत विनती की तब वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोज का प्रबंध किया और अखमीरी रोटियां बनाई और उन्होंने खाई। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इन व्यक्तियों के लिए यह दूसरा भोज था। पहले इन्होंने इब्राहिम के साथ भोज किया और अब ये लूत के साथ कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि हम चौराहे पर ही रात बिताएंगे तो उन्होंने कुछ बाहर निकाला और लूत उनसे कहता है कि आप यहाँ सदों में ऐसा ना करें, यह खतरनाक है, आपका जीवन इस योग्य नहीं रहेगा यदि आप ऐसा करते हैं। तब क्या आपसे कुछ कहूं? मित्रों, बहुत से शहर जिसका नाम आज सदोम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से शहरों में बाहर सोना आपके लिए सुरक्षाप्रद नहीं है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत सी महिलाएं रात को कहीं आ जा नहीं सकती हैं। किसी ने एक से कहा कि मैं शाम होते ही अपने घर में ताला लगा देता हूं और दूसरे दिन उजाला होने पर ही उसे खोलता हूं। आज हम अपने पड़ोस और रोड में चलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। सदोम और अमोरा के दिनों में जैसे जगह उस दिनों में थे, आज भी हमें देखने को मिलती है। और व्यवहारिक रूप से देखें तो उसके कारण भी शारीरिक अभिलाषाएं हैं। लूत उनसे कहते हैं कि आप लोग चौराहे में मत ठहरिए, यह आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। जब उसने उन पर दबाव बनाया तो वे उसके घर में आए। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 19 अध्याय और उसके 4 और 5 पद में। इससे पहले कि वे सोते, उस नगर के लोगों ने अर्थात सदोम के पुरुषों वरन जवानों और बूढ़ों दोनों ने चारों ओर से आकर उस घर को घेर लिया और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, आज रात जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं वे कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकाल हमारे पास ले आ कि हम उनसे संभोग करें। मित्रों, यह बहुत ही दुखमय दृश्य है, लेकिन आज हमारा अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। इसके विश्लेषण को हम अगले अध्ययन में देखेंगे। तब तक प्रभु आप सबकी रक्षा करे और अपनी आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।